दानियल की पुस्तक संख्या 42। जोड़ने वाली कड़िया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक सेतु जैसा भविष्यवक्ता था।
भविष्यद्वक्ता यूहन्ना दो युगों के बीच जोड़ने वाली कड़ी थे। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वे इस हेतु सामने आए कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का मसीही युग से क्या संबंध है, ये दिखाएं। वे छोटी ज्योति थे जिसके बाद एक बड़ी ज्योति आने वाली थी। यूहन्ना का मन पवित्र आत्मा से प्रकाशित किया गया था ताकि वो अपनी प्रजा पर प्रकाश डाल सके, परंतु गिरे हुए मनुष्य पर उतनी स्पष्टता से कोई अन्य प्रकाश न कभी चमका है न कभी चमकेगा जितना यीशु की शिक्षा और उदाहरण से निकला हुआ प्रकाश। मसीह और उनके मिशन को, जिनका प्रतीक छायामय बलिदानों में किया गया था, केवल धुंधले रूप में ही समझा गया था। यहां तक कि यूहन्ना ने भी उद्धारकर्ता के द्वारा मिलने वाले भावी अमर जीवन को पूरी तरह नहीं समझा था। द डिजायर ऑफ एजेस 220।
यीशु भी एक संयोजक कड़ी भविष्यद्वक्ता थे।
मसीह ने पृथ्वी से स्वर्ग तक का मार्ग दिखाया है। वह दोनों संसारों को जोड़ने वाली कड़ी है। वह परमेश्वर का प्रेम और कृपा मनुष्य तक लाता है और अपनी योग्यता के द्वारा मनुष्य को ऊपर उठाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप तक ले आता है। मसीही मार्ग सत्य और जीवन है। शुद्धता और पवित्रता के मार्ग में कदम दर कदम कष्टकर और धीमी गति से आगे और ऊपर बढ़ते जाना कठिन काम है, परंतु दिव्य जीवन में उठाए गए प्रत्येक आगे के कदम पर नया जोश और दिव्य सामर्थ्य देने के लिए मसीह ने प्रचुर व्यवस्था की है। यही वो ज्ञान और अनुभव है जिसे कार्यालय के सभी कर्मचारी चाहते हैं और जो उनके पास होना भी अनिवार्य है, अन्यथा वे प्रतिदिन मसीह के कार्य पर बदनामी लाते हैं। टेस्टिमोनीज खंड 3 1937।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भविष्यवाणी संबंधी कार्य में पार्थिव युग व्यवस्था को स्वर्गीय पवित्र स्थान से जोड़ना शामिल था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहली बार यीशु को देखा तो उसके पहले शब्द ये थे,
अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप दूर कर देता है। यूहन्ना 1:29।
यद्यपि जॉन को प्राचीन इसराइल से आध्यात्मिक इसराइल की ओर होने वाले परिवर्तन की पहचान करनी थी, फिर भी उस परिवर्तन के बारे में उसकी समझ सीमित थी।
मसीह ने यूहन्ना का समर्थन करते हुए कहा, परंतु तुम क्या देखने के लिए बाहर गए थे? क्या एक भविष्यद्वक्ता? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, और भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर। यूहन्ना केवल आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं था, बल्कि वो प्रतिज्ञा का पुत्र था, जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और सुधारक के रूप में एक विशेष कार्य करने के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराया गया था। मसीह को ग्रहण करने के लिए एक प्रजा को तैयार करने हेतु भविष्यद्वक्ता यूहन्ना उन दो व्यवस्थाओं के बीच की कड़ी था।
परमेश्वर से उनके दूर हो जाने के परिणाम स्वरूप यहूदियों का धर्म मुख्यतः अनुष्ठानों तक सीमित हो गया था। यूहन्ना वो छोटी ज्योति था जिसके बाद एक बड़ी ज्योति आने वाली थी। उसका काम था कि वो लोगों के अपनी परंपराओं पर विश्वास को झकझोर दे, उनके पापों की याद उन्हें दिलाए और उन्हें पश्चाताप की ओर ले चले ताकि वे मसीह के कार्य का मूल्य समझने के लिए तैयार हो सकें। परमेश्वर ने प्रेरणा द्वारा यूहन्ना से संवाद किया और उस नबी को आलोकित किया ताकि वो ईमानदार यहूदियों के मनों से वो अंधविश्वास और अंधकार दूर कर सके जो पीढ़ियों से झूठी शिक्षाओं के कारण उन पर जमा होता चला आया था।
यीशु का अनुसरण करने वाला, उसके चमत्कारों का साक्षी बनने वाला, उसकी दिव्य शिक्षाएं सुनने वाला और उसके होंठों से निकले सांत्वनादायक वचन सुनने वाला सबसे छोटा शिष्य भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि उसके पास अधिक स्पष्ट प्रकाश था। पापी और पतित मनुष्य की बुद्धि पर उस प्रकाश को छोड़कर कोई अन्य प्रकाश न तो कभी चमका है और न ही कभी चमकेगा। जो संसार का प्रकाश है उसके द्वारा पहले भी और अब भी संप्रेषित किया गया है। मसीह और उसके मिशन को छाया स्वरूप बलिदानों के माध्यम से केवल धुंधले रूप में ही समझा गया था। यहाँ तक कि यूहन्ना भी सोचता था कि मसीह का राज्य यरूशलेम में होगा और वो एक सांसारिक राज्य स्थापित करेगा जिसकी प्रजा पवित्र होगी। रिव्यू एंड हेराल्ड 8 अप्रैल 1873।
प्रेरित पौलुस भी एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जिनका कार्य शाब्दिक से आध्यात्मिक में हो रहे संक्रमण के भविष्यवाणीगत अनुप्रयोगों की पहचान करना था। वे समझते थे कि शाब्दिक यरूशलेम अब भविष्यवाणी में वर्णित यरूशलेम नहीं रहा, क्योंकि तब वो स्वर्गीय यरूशलेम में रूपांतरित हो चुका था।
क्योंकि ये अगार अरब में सिनी पर्वत है और वर्तमान यरूशलेम से मेल खाती है, जो अपनी संतानों सहित दासत्व में है। परंतु जो ऊपर वाला यरूशलेम है वो स्वतंत्र है, वही हम सब की माता है। गलातियों 4:25-26।
2 थिस्सलुनीकियों के अध्याय 2 में, जिस पर हम विचार कर रहे थे, पौलुस ने पहचाना कि वास्तविक मूर्ति पूजक रोम वो शक्ति थी जिसने आध्यात्मिक पापाई रोम को सन 538 तक सिंहासन पर आरूढ़ होने से रोके रखा। उस अध्याय में वो ये भी बताता है कि पाप का मनुष्य जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा है वही राजा था जिसे दानियल ने अध्याय 11:36 में पहचाना था। ये प्रमाण कि दानियल 11 की अंतिम 6 पदों में उत्तर का राजा पापाई सत्ता है, 1979 में ज्ञान की वृद्धि से फ्यूचर फॉर अमेरिका द्वारा प्रयुक्त सत्य के ढांचे की स्थापना की कुंजी बन गया। उसी अध्याय में पौलुस ने पोप तंत्र के उदय को रोकने में मूर्ति पूजक रोम की भूमिका की पहचान की, उस समय तक जब मूर्ति पूजक रोम हटा दिया जाएगा, और इस प्रकार ये भी पहचाना कि दानियल की पुस्तक में नित्य से अभिप्राय मूर्ति पूजक रोम था। वो सत्य 17 आवास में ज्ञान में हुई वृद्धि को जन्म देने वाले सत्य के ढांचे की स्थापना की मुख्य कुंजी बन गया। विलियम मिलर के इतिहास में संदेश का प्रचार उस समय किया गया था जब फिलाडेल्फियाई आंदोलन से लाओदिकियाई आंदोलन में संक्रमण होने वाला था। फ्यूचर फॉर अमेरिका के इतिहास में लाओदिकियाई आंदोलन से फिलाडेल्फियाई आंदोलन की ओर संक्रमण अब हो रहा है।
2 थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने जो सत्य प्रस्तुत किया था, जिसने शाब्दिक मूर्ति पूजक रोम से आध्यात्मिक पोप प्रधान रोम तक के संक्रमण की पहचान कराई, वही मिलर की भविष्य सूचक समझ का ढांचा बन गया। शाब्दिक से आध्यात्मिक की ओर होने वाले इस संक्रमण को समझाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा नेम तक देने वाला और पौलुस दोनों को उठाया गया था। विलियम मिलर का पूर्व रूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और अपने कार्य में उसके लिए ये अनिवार्य था कि वो मूर्ति पूजक रोम और पोप प्रधान रोम के संबंध तथा उनके बीच के संक्रमण को पहचाने, वही संक्रमण जिसकी पहचान कराने के लिए यूहन्ना को उठाया गया था। दानियल की पुस्तक में दानिक के 5 संदर्भ है और वे हमेशा पापाई शक्ति के किसी प्रतीक से पहले आते हैं। जिस भविष्यद्वाणीगत संक्रमण पर हम विचार कर रहे हैं उसके संदर्भ में इन 5 संदर्भों में शाब्दिक रोम से आध्यात्मिक रोम में परिवर्तन शामिल है। दानियल की पुस्तक का दानिक हबक्कूक की 2 पट्टिकाओं पर निरूपित सत्यों में से एक है और इसलिए वो एक आधारभूत सत्य है जिसकी रक्षा की जानी थी। ऐसा सत्य जो अंततः झूठे और नकली गहनों और मैस सिक्कों से ढक दिया जाएगा। ये कोई संयोग नहीं है कि उन 2 पवित्र पट्टिकाओं पर निरूपित प्रत्येक सत्य को एलन वाइट के लेखनों में प्रत्यक्ष प्रेरित समर्थन प्राप्त है। किसी भी आधारभूत सत्य को, जिसमें दानिक भी शामिल है, अस्वीकार करना उसी समय भविष्यद्वाणी की आत्मा के अधिकार को अस्वीकार करना है।
तब मैंने डेली के संबंध में देखा कि सैक्रिफाइस शब्द मनुष्य की बुद्धि से जोड़ा गया था और मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, और ये कि प्रभु ने उसकी सही समझ उन लोगों को दी जिन्होंने न्याय के समय की पुकार दी। जब 1814 से पहले एकता विद्यमान थी तो लगभग सभी डेली की सही समझ पर एकमत थे, परंतु 1814 के बाद भ्रम के बीच अन्य विचारों को स्वीकार कर लिया गया है और परिणाम स्वरूप अंधकार और भ्रम छा गया है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 1 नवंबर 1850।
जिन्होंने न्याय घड़ी की पुकार दी उन्होंने द डेली को मूर्ति पूजकता और या मूर्ति पूजक रोम का प्रतीक समझा। उनकी समझ में ये बात भी शामिल थी कि वे जानते थे कि दानियल में जहां वो खंड आता है वहां सैक्रिफाइस शब्द का स्थान नहीं है। उसे किंग जेम्स बाइबल के अनुवादकों ने मानवीय बुद्धि से जोड़ दिया था। अग्रदूतों की समझ में ये भी था कि द डेली को हमेशा पापाई शक्ति के 2 प्रतीकों में से एक के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता था और मूर्ति पूजकता द डेली हमेशा पापाई प्रतीक से पहले आती थी। उनकी पहचान हमेशा उसी क्रम में की जाती थी जिसमें वे भविष्यवाणी के इतिहास में प्रकट हुए। दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें मूर्ति पूजकता के पापायत से पहले होने के ऐतिहासिक क्रम से कभी नहीं हटती, और जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक झूठे भविष्यद्वक्ता की तीसरी उजाड़ रे ने वाली शक्ति को प्रस्तुत करती है, तब भी वो क्रम सदा बनाए रखा जाता है। पौलुस की उस शिक्षा के बिना कि भविष्यवाणी की शाब्दिक बातें क्रूस के समय आध्यात्मिक में परिवर्तित हो गईं, यूहन्ना को छोड़कर सभी सुसमाचारों में पाई जाने वाली मसीह की यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी के साथ एक दुविधा उत्पन्न होती है। दानियल की पुस्तक में डायनिक से जुड़ी पापाई सत्ता के दो प्रतीक, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु और उजाड़ने वाली अधर्मता, ये दोनों प्रतीक पशु के चिन्ह घृणित वस्तु और पशु की प्रतिमा अधर्मता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अधर्म जो पापाई सत्ता को उन लोगों की हत्या करने की अनुमति देता है जिन्हें वो विधर्मी मानती है। कलीसिया और राज्य का वो गठजोड़ है जिसमें इस संबंध पर कलीसिया का नियंत्रण होता है। इस प्रकार दानियल कलीसिया और राज्य के उस संयोजन को जो पापाई पशु की प्रतिमा है उजाड़ की अधर्मता के रूप में प्रस्तुत करता है। बाइबल मूर्ति पूजा को घृणास्पद ठहराती है और पापाई शक्ति की सारी मूर्ति पूजा उसके मूर्ति पूजक विश्राम दिन से प्रदर्शित होती है, जिसे यूहन्ना पशु की छाप और दानियल उजाड़ करने वाली घृणास्पद वस्तु कहते हैं।
और उनमें से एक छोटा सा सीन निकला जो दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और मनोरम देश की ओर अत्यंत बड़ा होता गया, और वो बढ़कर आकाश की सेना तक पहुंच गया, और उसने उस सेना में से और तारों में से कुछ को पृथ्वी पर गिरा दिया और उन्हें रौंद डाला। हाँ, उसने अपने आप को सेना के प्रधान तक भी बड़ा किया, और उसके द्वारा नित्य का बलिदान हटा दिया गया और उसका पवित्र स्थान गिरा दिया गया, और अपराध के कारण नित्य बलिदान के विरुद्ध उसे एक सेना दी गई, और उसने सत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया, और वो करता रहा और सफल हुआ। दानियल 8:9-12।
इन पदों पर हम किसी अन्य लेख में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु 11वें पद में मसीह के विरुद्ध स्वयं को बड़ा करने वाली शक्ति मूर्ति पूजक रोम थी। उसने उनके जन्म के समय उन्हें मारने का प्रयास किया और अंततः क्रूस पर ऐसा कर दिया। उस पद में कहा गया है कि उसके द्वारा मूर्ति पूजक रोम दैनिक हटा लिया गया। हटा लिया गया के रूप में अनुदित हिब्रू शब्द रुम है, और उसका अर्थ ऊंचा उठाना और महिमा मंडित करना है। मूर्ति पूजक रोम मूर्ति पूजा के धर्म को ऊंचा उठाता और उसका महिमा मंडन करता, और इतिहास में उसने ठीक वही किया। इसी कारण उसे मूर्ति पूजक रोम कहा जाता है। अगली आयत ये बताती है कि पापसी रोम को एक होस्ट सैन्य शक्ति दी गई थी जो द डेली पैगनवाद के विरुद्ध थी या उसे परास्त करने वाली थी। ये भी इतिहास का तथ्य है, क्योंकि पापसी ने, हालांकि उसकी अपनी कोई सेना कभी नहीं रही, सत्ता में उसके उदय पर लगाए गए प्रतिबंध को दूर करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग किया। वो शक्ति पैगन रोम से आई। जिस सैन्य शक्ति का उसने उपयोग किया वो उसे ट्रांसग्रेशन के माध्यम से दी गई थी, क्योंकि वो ट्रांसग्रेशन जिसने उसे उन राजाओं की सेनाओं को नियंत्रित करने दिया जिन्होंने वर्ष 538 में उसे सिंहासन पर बैठाया, चर्च और राज्य के संयोजन का ट्रांसग्रेशन था। पहले पैगन रोम को 11वीं आयत में संबोधित किया गया है विद्यार्थी को ये बताते हुए कि पैगन रोम मसीह के विरुद्ध खड़ा होगा और वो पैगनवाद के धर्म को महिमा मंडित करेगा। अगला पद कलीसिया और राज्य के गठजोड़ के उस अधर्म का वर्णन करता है जिसने पोपाई सत्ता को उस रोक टोक पर विजय पाने और उसे हटाने में सक्षम बनाया जो मूर्ति पूजक रोम ने उसके विरुद्ध लागू की हुई थी। इतिहास उन दोनों पदों के अनुप्रयोग का समर्थन करता है। दैनिक या तो मूर्ति पूजक रोम वह शक्ति जो मसीह के विरोध में खड़ी हुई का प्रतिनिधित्व करता है, या उस मूर्ति पूजक धर्म का जिसे मूर्ति पूजक रोम ने ऊंचा उठाया था। दैनिक के प्रतीक के बाद फिर पोपाई सत्ता का उल्लेख आता है, क्योंकि ये कलीसिया और राज्य के उस अधर्म की पहचान कराता है जो पोपाई सत्ता को अपने दुष्कर्म करवाने के लिए एक सेना देकर सशक्त बनाता है। दानियल द्वारा दैनिक का तीसरा प्रयोग वह प्रश्न है जो उस उत्तर को जन्म देता है जो एडवेंटवाद का केंद्रीय स्तंभ है।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, और दूसरे पवित्र जन ने उस पवित्र जन से जो बोल रहा था कहा, नित्य बलिदान और उजाड़ देने वाले अपराध के विषय में ये दर्शन कब तक रहेगा कि पवित्र स्थान और सेना दोनों पैरों तले रौंदे जाएं? दानियाल 8:13।
इस पद में ये पूछा गया है कि ये दर्शन कितने समय तक रहेगा, अर्थात उत्तर अवधि बताने वाला है, किसी तिथि का नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि किस तिथि को ये दर्शन पूरा होगा, बल्कि ये कि इस दर्शन की अवधि कितनी है। ये पद कब नहीं बल्कि कितने समय तक पूछता है। ये दर्शन पैगनवाद की उजाड़ने वाली शक्तियों के बारे में है जिन्हें नित्य के रूप में दर्शाया गया है, और पोप तंत्र के बारे में जिसे उसके उस अधर्म द्वारा निरूपित किया गया है जो तब पूरा होता है जब तब वो पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती जोगो रहते हैं। ये दोनों उजाड़ने वाली शक्तियां पहले सैगनवाद और उसके पश्चात पोपतंत्र सात समय की अवधि तक पवित्र स्थान और सेना को रौंदने वाली थीं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भौतिक पवित्र स्थान का रौंदा जाना जी बाबुल के समय शुरू हुआ और 70 ईस्वी दवरा में मूर्ति पूजक रोम द्वारा यरूशलेम के विनाश तक जारी रहा, आरंभ से अंत तक मूर्ति पूजक शक्तियों द्वारा ही किया गया था। अतः भौतिक पवित्र स्थान और भौतिक प्रजा परमेश्वर की प्रजा को अनेक मूर्ति पूजक शक्तियों ने ही रौंदा, लेकिन आध्यात्मिक यरूशलेम और आध्यात्मिक इज़राइल को आध्यात्मिक रोम ने रौंदा।
पर मंदिर के बाहर जो आंगन है उसे छोड़ दे और उसे ना माप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक पैरों तले रौंदेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट का वस्त्र पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:2-3।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक कड़ी जोड़ने वाले भविष्यद्वक्ता थे। उन्होंने अपने कार्य की पूर्णता जाने बिना पार्थिव पवित्र स्थान से स्वर्गीय पवित्र स्थान की ओर युग व्यवस्था में हुए परिवर्तन को पहचाना। पौलुस एक कड़ी जोड़ने वाले भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने शाब्दिक इज़राइल से नादल से आध्यात्मिक इज़राइल की ओर युग व्यवस्था के परिवर्तन को पहचाना। जो यरूशलेम 42 महीनों तक रौंदा गया वो आध्यात्मिक यरूशलेम था।
यहाँ उल्लिखित अवधियां 40 और 2 महीने और 1260 दिन एक ही हैं। दोनों उस समय का प्रतिनिधित्व करती हैं जब मसीह की कलीसिया को रोम से उत्पीड़न सहना था। पापल सर्वोच्चता के 260 वर्ष ईस्वी 548 में आरंभ हुए और अथ इसवन थाने में समाप्त होने थे। उस समय एक फ्रांसीसी सेना रोम में प्रवेश कर गई और पोप को बंदी बना लिया और वो निर्वासन में ही मर गया। यद्यपि शीघ्र ही बाद में एक नए पोप का चुनाव कर दिया गया, फिर भी पापल पदानुक्रम तब से वो शक्ति कभी नहीं चला सका जो पहले उसके पास थी। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 266।
पौलुस ने ये स्पष्ट किया कि क्रूस की ऐतिहासिक घटना में हुए परिवर्तन के साथ वह आत्मिक यरूशलेम जो ऊपर है वो नगर बन गया जिसे परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए चुना, और भौतिक यरूशलेम बाइबल की भविष्यवाणियों का यरूशलेम नहीं रहा,
क्योंकि ये अगार अरब में सिनी पर्वत है और वर्तमान यरूशलेम से मेल खाती है जो अपनी संतानों सहित दासत्व में है। परंतु जो ऊपर वाला यरूशलेम है वो स्वतंत्र है, वही हम सब की माता है। गलातियों 4:25-26।
इस सत्य को सही ढंग से समझना अत्यंत आवश्यक है, और बाइबल की भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में शाब्दिक यरूशलेम का गलत प्रयोग उस छल का हिस्सा है जो जेसुइटों द्वारा इस सत्य को कमजोर करने के लिए रचा गया है कि रोम का पोप ही मसीह विरोधी है। वो झूठी शैतशा धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के भीतर ऐसी धारणा उत्पन्न करती है जो उन्हें भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में आधुनिक यहूदी राष्ट्र इज़राइल की ओर गलत ढंग से देखने देती है। क्रूस के समय से शाब्दिक यरूशलेम परमेश्वर का यरूशलेम रहना बंद हो गया।
यरूशलेम का नगर अब पवित्र स्थान नहीं रहा। मसीह को अस्वीकार करने और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के कारण उस पर परमेश्वर का श्राप है। उस पर अपराध का एक काला कलंक पड़ा हुआ है, और जब तक वो स्वर्ग की शुद्ध करने वाली आग से शुद्ध नहीं कर दी जाएगी तब तक वो फिर कभी पवित्र स्थान नहीं बनेगी। जब ये पाप शापित पृथ्वी पाप के हर दाग से शुद्ध कर दी जाएगी तब मसीह फिर से जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे
जैसे ही उनके पांव उस पर टिकेंगे वो फटकर अलग हो जाएगा और परमेश्वर के नगर के लिए तैयार एक विशाल समतल मैदान बन जाएगा। रिव्यू एंड हेरल्ड 3 जुलाई 1901।
जब हम विश्व के अंत के विषय में मसीह की भविष्यवाणी पर विचार करेंगे तब शाब्दिक यरूशलेम और आध्यात्मिक यरूशलेम के बीच के अंतर की प्रासंगिकता को संबोधित किया जाएगा। दानियल नित्य को चौथी बार 11वें अध्याय में निर्दिष्ट करता है।
और उसके पक्ष में सेना खड़ी होगी और वे बल के पवित्र स्थान को अशुद्ध करेंगे और नित्य का बलिदान हटा देंगे और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को स्थापित करेंगे। दानियल 11:33।
ये पद वर्ष 538 में पापसी को पृथ्वी के सिंहासन पर बैठाने में मूर्ति पूजक रोम के कार्य की पहचान करता है। भुजाएं मूर्ति पूजक रोम की उस सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पापसी के समर्थन में खड़ी हुई, जिसकी शुरुआत वर्ष 99 में फ्रैंको के राजा क्लोविस से हुई। क्लोविस के बाद विभिन्न यूरोपाराओं ने पापसी के प्रतिष्ठापन के लिए काम किया, पर यह पद उन चार बातों की पहचान करता है जो यूरोपीय राजाओं भुजाओं ने पापसी के लिए की जब उन्होंने टायर की वैश्या के साथ कलीशा और राज्य का गठबंधन बनाकर उल्लंघन किया। जैसे ही वे पापसी के समर्थन में खड़े हुए, उन्होंने रोम नगर को अपवित्र किया या नष्ट कर दिया, जो मूर्ति पूजक और पापसी रोम दोनों की शक्ति का प्रतीक था। उस पद में वर्णित अपवित्रीकरण वर्षों तक बार बार किया गया, क्योंकि रोम नगर पर लगातार सैन्य आक्रमण होते रहे। वे यूरोपीय राजा भुजाएं नित्य को भी हटा देंगे। इस पद में हटा देना के रूप में अनुदित हिब्रू शब्द रम नहीं है, जैसा कि अध्याय 8 में था। इस पद में हटा देना के रूप में अनुदित शब्द सूर है और उसका अर्थ है हटाना। यूरोपीय राजाओं की भुजाएं वर्ष 508 में पापसी के उदय के विरुद्ध मूर्ति पूजक प्रतिरोध को हटा देंगी। फिर वर्ष 538 में वही भुजाएं पापसी को पृथ्वी के सिंहासन पर स्थापित कर देंगी। और उसी वर्ष ऑरलियां की परिषद में पापसी ने रविवार का कानून लागू किया। आराधना के दिन के रूप में रविवार को सिस्टर व्हाइट मूर्ति सप्त कहती है और मूर्ति पूजा गृहणिता शब्द की सटीक बाइबिलीय परिभाषा है। सन 538 में मूर्ति पूजक रोम की सैन्य शक्ति ने उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु स्थापित की।
जो कोई भी उस मूर्ति परस सप्त को ऊंचा उठाते और उसकी आराधना करते हैं, ऐसा दिन जिसे परमेश्वर ने आशीषित नहीं किया, वे अपनी परमेश्वर प्रदत्त क्षमता का समस्त बल लगाकर, जिसे उन्होंने गलत उपयोग के लिए विकृत कर दिया है, शैतान और उसके स्वर्गदूतों की सहायता करते हैं, किसी अन्य आत्मा से प्रेरित होकर जो उनके विवेक को अंधा कर देता है। वे ये नहीं देख पाते कि रविवार का महिमा मंडन पूरी तरह कैथोलिक कलीसिया की व्यवस्था है। चुने हुए संदेश पुस्तक 3:33 पाश।
भविष्यवाणी और इतिहास उस अनुप्रयोग का समर्थन करते हैं जिसे हमने अभी अभी पद 31 के लिए पहचाना है। जब हम कहते हैं कि भविष्यवाणी इस अनुप्रयोग का समर्थन करती है, तो हमारा आशय इस तथ्य से है कि अन्य भविष्यवाणियां भी हैं जो इन्हीं तथ्यों को संबोधित करती हैं, यद्यपि हम उन्हें इस समय चर्चा में शामिल नहीं कर रहे हैं। दानियल द्वारा नित्य का पांचवा और अंतिम उपयोग 12वें अध्याय में मिलता है।
और जिस समय से नित्य होम बलि हटा दी जाएगी और उजाड़ करने वाली घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन होंगे। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और 1335 दिन तक पहुंचता है। दानियल 12:11-12।
भविष्यवाणी और इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्ष 508 में पापाई सत्ता के उदय के विरुद्ध प्रतिरोध मूलतः समाप्त हो गया, जब तीन भौगोलिक बाधाओं में से अंतिम गोथों को, जैसा कि दानियल के 7वें अध्याय में बताया गया है, उखाड़ फेंका गया।
मैं उन सींगों पर विचार कर रहा था और देखो, उनके बीच से एक और छोटा सींग निकला, जिसके सामने प्रथम सींगों में से तीन जड़ सहित उखाड़ दिए गए। और देखो, उस सींग में मनुष्य की आंखों के समान आंखें थीं और एक मुंह जो बड़ी बड़ी बातें करता था। दानियल 7:12।
हटाए जा रहे तीन सींग दो पवित्र तालिकाओं पर दर्शाए गए हैं, और जब उन तीन भौगोलिक बाधाओं में से तीसरी को वर्ष 522 में रोम नगर से निकाल बाहर किया गया, तो पापल सत्ता के उदय के विरुद्ध का प्रतिरोध हट गया। 11वें पद में संदर्भित स्थापना 522 और 538 के बीच के 30 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। ये उन 30 वर्षों को चिन्हित करती है जिनमें परमेश्वर के मंदिर में पाप के मनुष्य की स्थापना की तैयारी पूरी की गई। टेकन अवे के रूप में अनूदित कद्र शब्द स्वर भी है, जिसका अर्थ हटाना होता है, और 508 में पापाई सत्ता के उदय के विरुद्ध जो प्रतिरोध था वो हटा दिया गया, हटा लिया गया। उस तारीख से 1290 वर्ष आपको 1798 तक ले जाते हैं और पापाई सत्ता के घातक घाव तक, 1335 दिन आपको पहली निराशा तक, और 1843 वर्ष के बिल्कुल अंत में प्रतीक्षा के समय की शुरुआत तक ले जाते हैं। वो पद 1843 तक कमत करने वालों के लिए आशीर्वाद का वादा करता है। कमत शब्द का अर्थ स्पर्श करना है। 1844 का पहला दिन पहली निराशा को चिन्हित करता है, लेकिन 1843 का अंतिम दिन 1843 के पहले क्षण को स्पर्श करता है। किसी वर्ष का अंतिम दिन अगले वर्ष के पहले दिन को स्पर्श करता है। उस तारीख से जुड़ा आशीर्वाद इतिहास और भविष्यवाणी द्वारा समर्थित है। हम अगले लेख में द डेली को एक आधारभूत सत्य के रूप में इसके महत्व पर विचार करना जारी रखेंगे।
1840 to 1844 से दिए गए सब संदेशों को अब प्रभावशाली बनाया जाना है, क्योंकि बहुत से लोग अपना मार्गदर्शन खो चुके हैं। ये संदेश सब कलीसियाओं तक पहुंचने हैं। मसीह ने कहा, धन्य है तुम्हारी आँखें क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी जनों ने उन बातों को देखने की इच्छा की जिन्हें तुम देखते हो और उन्हें नहीं देखा, और उन बातों को सुनने की इच्छा की जिन्हें तुम सुनते हो और उन्हें नहीं सुना। मत्ती 13:16-17। धन्य है वे आँखें जिन्होंने 1843 और 1845 में प्रकट हुई बातों को देखा। संदेश दिया गया था और इस संदेश को दोहराने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। समापन का कार्य अवश्य किया जाना है। थोड़े समय में एक महान कार्य किया जाएगा। परमेश्वर की नियुक्ति से शीघ्र ही एक ऐसा संदेश दिया जाएगा जो प्रबल पुकार में परिवर्तित हो जाएगा। तब दानियेल अपने भाग में खड़ा होगा अपनी गवाही देने के लिए। मैनुस्क्रिप्ट रिलीजेज वॉल्यूम 24, 37।